डॉक्टर डेविड डिसिल्वा, नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया। सत्र 5, परिवार और गृहस्थी। 2024, डेविड डिसिल्वा और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेविड डिसिल्वा द्वारा नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया पर दिए गए अपने व्याख्यान में है। यह सत्र 5 है, परिवार और गृहस्थी। परिवार मानव समाज में सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई है, वह समूह जो अधिकांश व्यक्तियों के लिए जीवन भर में सबसे अधिक बार सामना किया जाने वाला और सबसे महत्वपूर्ण रूप से संलग्न सामाजिक इकाई है। पहली सदी में परिवार कैसा था? घर के सदस्यों की एक दूसरे से क्या अपेक्षाएं थीं? दूसरे शब्दों में, नए नियम के पन्नों में इतनी सारी रिश्तेदारी भाषा का रोजमर्रा का संदर्भ और लोकाचार क्या था? उदाहरण के लिए, हम पौलुस द्वारा परमेश्वर द्वारा गोद लिए जाने और अब्राहम के परिवार में शामिल किए जाने को दिए गए महत्व को कैसे समझा सकते हैं? आरंभिक ईसाई नेताओं ने भाई और बहन को आंतरिक चर्च संबंधों के लिए प्राथमिक मॉडल के रूप में चुनकर किस तरह के समुदाय का पोषण करने की कोशिश की? अगर हमें परमेश्वर के घराने के रूप में आस्था के समुदायों के लिए नए नियम के दृष्टिकोण की समृद्धि को पुनः प्राप्त करना है, साथ ही उन ग्रंथों को समझना है जो परिवार, वंश और रिश्तेदारों के व्यवहार के बारे में बोलते हैं, तो हमें खुद को प्राचीन वास्तविकताओं और रिश्तेदारी की नैतिकता में डुबोने की जरूरत है। हम प्राचीन दुनिया में रिश्तेदारी कैसे स्थापित करते हैं? अमेरिका में रियल्टर्स की एक कहावत है, संपत्ति खरीदने में 3 सबसे महत्वपूर्ण कारक स्थान, स्थान और स्थान हैं। प्राचीन दुनिया में वंश ने सामाजिक ताने बाने में एक व्यक्ति का स्थान स्थापित किया। पुराने और नए नियम में वंशावली पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना इस बात का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, अगर हम एज्रा और नहेमायाह को देखें और निर्वासन के समुदाय के बीच किए गए सुधारों के बारे में सोचें, तो हम देखते हैं कि वंश और वंश का पता लगाने की क्षमता सामाजिक निकाय का हिस्सा होने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जिसे इज़राइल राष्ट्र, इज़राइल के लोग कहा जाता है। यदि आपके पास 12 जनजातियों के परिवार के भीतर एक सत्यापन योग्य वंशावली नहीं है, तो आप उस लोगों का हिस्सा नहीं हैं। इसराइल राष्ट्र के भीतर एक आंतरिक संरचना प्रदान की गई है। वंश के आधार पर आंतरिक पदानुक्रम का गठन किया जाता है। फिर से उन्हीं पुस्तकों में हम पुजारी और लेवी कुलों की वंशावली को संरक्षित करने और अभिव्यक्त करने पर दिए गए सावधानी पूर्वक ध्यान को देख सकते हैं। प्राचीन दुनिया में व्यक्ति की योग्यता, साथ ही समाज में उसका स्थान, उसके माता पिता की योग्यता, उसके परिवार या कुल की योग्यता और उसके पूर्वजों की योग्यता से शुरू होता है। हमने सम्मान पर अपनी चर्चा में इस पर संक्षेप में चर्चा की। किसी व्यक्ति के सम्मान का प्रारंभिक बिंदु उस परिवार का सम्मान है जिसमें वह पैदा हुआ है, जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। इसका एक अच्छा उदाहरण टोबिट की पुस्तक में अपोक्रिफा से मिलता है। टोबिट अपने बेटे टोबियास को एक मिशन पर भेज रहा है ताकि वह कुछ प्रतिभा वजन चांदी इकट्ठा कर सके जो यात्रा पर परिवार के एक दोस्त के पास जमा करके छोड़ी गई थी। टोबिट उस व्यक्ति की वंशावली के बारे में सवाल पूछता है। तो मैं अध्याय 5 श्लोक 11 और उसके बाद के भाग को पढ़ूंगा। टोबिट ने अजरियाह से पूछा, भाई तुम किस वंश से हो और किस गोत्र से हो? मुझे बताओ भाई। अजरियाह ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरा गोत्र जानने की क्या आवश्यकता है? लेकिन टोबिट ने कहा, भाई मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा नाम क्या है। उसने उत्तर दिया, मैं महान हनन्याह का पुत्र अजरियाह हूं, जो तुम्हारा एक संबंधी है। तब टोबिट ने उससे कहा, स्वागत है भाई, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हे भाई, मेरे विरुद्ध क्रोध मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे वंश के विषय में निश्चित होना चाहता था। अब पता चला है कि तुम एक अच्छे और कुलीन वंश के कुटुंबी हो। क्योंकि मैं शमल्याह के दो पुत्रों हननयाह और नातान को जानता था, और वे मेरे संग यरूशलेम को जाया करते थे और वहां मेरे साथ आराधना किया करते थे, और वे भटके नहीं थे। आपके रिश्तेदार अच्छे लोग हैं, आप अच्छे खानदान से हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। तो अजरयाह के पास जो अंतिम बायोडाटा है, वह उसका पारिवारिक वंश, उसका निकटतम परिवार है। और क्योंकि वह अच्छे वंश से आता है, इसलिए टोबिट की नजर में उसके पास अपने पूर्वजों की क्रेडिट रेटिंग है, और इसलिए उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जो इस संभावित रूप से बहुत खतरनाक मिशन पर टोबिट के बेटे टोबियास के साथ जाएगा। इसलिए इन संस्कृतियों में रिश्तेदारी और सम्मान बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। इस बारे में सोचें कि मैथ्यू का सुसमाचार कैसे शुरू होता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सेमिनरी में नहीं बल्कि अन्य संदर्भों में, कि मैं यीशु के बारे में और अधिक कैसे जानता हूं, मैं इसमें कैसे शामिल हो सकता हूं। मैं कहता हूं, ठीक है, सुसमाचार पढ़े। और फिर मैं तुरंत अपने आप से सोचता हूं, ओह, लेकिन मैथ्यू से शुरू मत करो, क्योंकि मैथ्यू 1:1-17 यीशु के बारे में कहानी शुरू करने का एक भयानक तरीका है, यदि आप 21वीं सदी के अमेरिका में पैदा हुए हैं। लेकिन मैथ्यू ने इस तरह से क्यों शुरू किया? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास संपादक की कमी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी संस्कृति में वह यीशु के बारे में बात करने का तरीका जानता है, और उसका महत्व उसके वंश के बारे में बात करना है। इसलिए अब्राहम और दाऊद से यीशु के वंश को आगे बढ़ाते हुए और उसे सामने रखते हुए पहली सदी में यीशु की कहानी को शुरू करने का यह एक शानदार तरीका है। इस तरह मत्ती यीशु की पहचान के बारे में एक आवश्यक दावा स्थापित कर सकता है कि वह दाऊद से किए गए वादों का उत्तराधिकारी है और अब्राहम से किए गए वादों का उत्तराधिकारी है। इसलिए यह एक अत्यधिक धार्मिक अध्याय है, भले ही हमारे लिए यह शायद स्टीरियो निर्देश पढ़ने जैसा है। वंशावली के ठीक बगल में एक और पहलू मैथ्यू द्वारा संख्या 14 पर जोर दिया जाना है। नए नियम के विद्यार्थी हमेशा इस तथ्य से परेशान रहते हैं कि मैथ्यू यीशु की 42 पीढ़ी की वंशावली प्रस्तुत करता है, जबकि ल्यूक, मुझे लगता है, यीशु की 56 पीढ़ी की वंशावली प्रस्तुत करता है। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, यह मैरी की तरफ से है और उनके पास खराब जीन रहे होंगे क्योंकि वे सभी बहुत पहले मर गए, क्योंकि इस दूसरी वंशावली को 42 पीढ़ियों तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसमें 56 पीढ़ियां हैं। लेकिन मैथ्यू जो कर रहा है वह वास्तव में अंकशास्त्र के माध्यम से दाऊद के उत्तराधिकारी के रूप में यीशु के महत्व को उजागर कर रहा है। हिब्रू में, जिसमें अंक नहीं होते, यह अक्षरों और संख्याओं के लिए अपने वर्णों का उपयोग करता है। हिब्रू में डेविड का नाम ऊपर एक डेलेट और एक और डेलेट के साथ लिखा जाता है, जो 14 होता है। और इसलिए यीशु की वंशावली में 14 को एनकोड करके उन तीन प्रमुख घटनाओं, अब्राहम, डेविड और फिर निर्वासन को अलग करके अंत में मसीह के आगमन में सभी को छुड़ाया गया, मैथ्यू यीशु के बारे में कुछ कहने में सक्षम है जो कि डेविड की अंतिम संतान और वंश है। शेक्सपियर के हेमलेट में हेमलेट अपने चाचा क्लॉडियस की ओर तिरछी नजर से देखता है, जो अब उसका सौतेला पिता भी बन गया है। एक जगह क्लॉडियस के भाषण के बाद, जिसमें उसके चरित्र के बारे में कुछ पता चलता है, हेमलेट कहता है, रिश्तेदार से थोड़ा ज्यादा और दयालु से कम, और दयालु से उसका मतलब कोमल और अच्छा नहीं है। उनका मतलब है कि वे एक ही वंश या एक ही तरह के हैं, शायद भाई, हेमलेट के वास्तविक पिता, जिन्हें क्लॉडियस ने हटा दिया था। स्पॉइलर अलर्ट, उसने वास्तव में अपने ही भाई को मार डाला। किसी भी घटना में रिश्तेदारी अक्सर एक ही तरह की होने में पाई जाती है, एक तरह के प्राकृतिक संबंध में एक ही तरह के सार को दर्शाती है। यह लोगों के समूह के जातीय स्तर पर हो सकता है। यूनानी जो वास्तव में रक्त से किसी भी तरह से संबंधित नहीं हो सकते हैं, फिर भी बर्बर लोगों के साथ एक दूसरे के साथ अपने रिश्तेदारी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम हम यूनानी, चाहे हमारी वास्तविक वंशावली कुछ भी हो, एक ही तरह के हैं। हम इतने समान हैं कि हम एक दूसरे को अनिवार्य रूप से रिश्तेदार मान सकते हैं, उस समूह के विपरीत जो हमसे बहुत अलग है। इसी तरह यहूदियों ने गैर यहूदियों के साथ अपने संबंध को व्यापक रूप से मान्यता दी, हालांकि यह भी काफी हद तक एक विस्तृत वंशावली में निहित था, जो अब्राहम से लेकर इसहाक और जैकब तक का पता लगाता है। रिश्तेदारी को अधिक स्थानीय स्तरों पर भी देखा जा सकता है, जनजाति का स्तर, कबीले का स्तर या कबीले के भीतर परिवार का स्तर। जिस स्तर पर रिश्तेदारी सक्रिय थी, वह संदर्भ के साथ बदल सकती थी। उदाहरण के लिए डायस्पोरा में, जहां यहूदी अक्सर खुद को अल्पसंख्यक पाते हैं, अन्य लोगों के समूहों, अन्य जातियों और अन्य राष्ट्रों के बहुमत से घिरे होते हैं, वे अन्य यहूदियों के साथ व्यवहार करने और अन्य यहूदियों को रिश्तेदार मानने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं, भले ही उनके बीच वास्तविक वंशावली संबंधों की निकटता हो। यह तब बदल सकता है जब किसी स्थान पर यहूदी बहुसंख्यक हों। उदाहरण के लिए गलील या यहूदिया में, जहां चूंकि हम में से अधिकांश लोग वैसे भी यहूदी हैं, इसलिए रिश्तेदारों के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इसे अधिक संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाता है। और इसलिए हम अपने परिवार, अपने कबीले के साथ अपने रिश्तेदारों की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन अन्य जनजातियों या हमारे कबीले से बाहर के लोगों के साथ परिवार की तरह नहीं बल्कि बाहरी लोगों की तरह व्यवहार करेंगे। और यह समय के साथ बदल सकता है। यहूदिया के एक गांव को लें, ठीक उसी समय जब एक रोमन सेना गांव से होकर मार्च कर रही होती है। उस समय गांव के सभी यहूदी शायद एक दूसरे से ज्यादा नजदीकी से जुड़े हुए महसूस करते थे, इस दृश्यमान और सशक्त बाहरी समूह की मौजूदगी के कारण जो निश्चित रूप से हम नहीं थे। उनके साथ हमारे रिश्ते की तुलना में हम सभी एक परिवार हैं। लेकिन फिर रोमन कोहोर्ट के चले जाने के बाद हम अपने रिश्तेदारी समूह को और भी ज्यादा संकीर्ण रूप से परिभाषित करने लग सकते हैं और उस गांव के दूसरे कबीलों के यहूदियों को ऐसे लोगों के रूप में नहीं सोच सकते जिनके प्रति हम परिवार के दायित्वों के ऋणी हैं। तो यह सब कहने का मतलब है कि रिश्तेदारी के बारे में काफी तरलता से सोचा जा सकता है। हमारी परिभाषा सेटिंग और इस संदर्भ में क्या हो रहा है, इस पर निर्भर करते हुए विस्तारित या संकुचित हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु में, किसी भी संदर्भ में, अब्राहम के बड़े परिवार को किसी भी छोटे विभाजन पर जोर देने की प्रवृत्ति है, चाहे वे रिश्तेदारी समूहों पर आधारित विभाजन हो या समानता पर आधारित विभाजन। उदाहरण के लिए वे सभी जो फरीसियों के सिद्धांत और व्यवहार को मानते हैं, जो हालांकि वे सभी वंशावली के अनुसार निकट से संबंधित नहीं हैं, वे एक दूसरे को एक दूसरे के समान होने के आधार पर एक दूसरे के रिश्तेदार के रूप में अधिक मानते हैं। इसराइल में रिश्तेदारों के इन छोटे उपसमूहों के खिलाफ यीशु सभी यहूदियों के एक दूसरे के साथ अब्राहम के बेटे और बेटियों के रूप में संबंध की ओर इशारा करते रहते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिन्हें वास्तव में खुद को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए बल्कि एक दूसरे के साथ बहनों और भाइयों के रूप में व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब सप्त के दिन अपंग महिला को ठीक करने के संबंध में चुनौती दी जाती है तो वह उसे अब्राहम की बेटी के रूप में संदर्भित करता है जो कि चंगा की गई पूर्व में अपंग महिला और आराधनालय के अधिकारियों के बीच आवश्यक पारिवारिक संबंध को दर्शाता है जो उसके प्रति उसके प्रेम और उपचार के कार्य के बारे में शिकायत कर रहे हैं। वह जक्कई का उल्लेख करता है जो कि बहुत और कुछ हद तक उचित रूप से कर संग्रहकर्ता के रूप में बदनाम है जो यहूदिया में उनके लिए काम करता है, यहूदिया में रोमन कब्जे वाली सेना के लिए काम करता है, रोमन कब्जे वाली सेना को उनके कर और श्रद्धांजलि प्राप्त करने में मदद करता है और अपनी जेबें भरता है। अधिक संभावना है, कम से कम इस प्रक्रिया में यह एक स्टीरियोटाइप है। लेकिन जक्कई के हृदय परिवर्तन के साथ यीशु यह भी कहते हैं वह अब्राहम का पुत्र भी है। उस समय यीशु के लिए जो महत्वपूर्ण था वह था जक्कई को बाकी लोगों के साथ पारिवारिक संबंधों में वापस लाना, क्योंकि वह रोमन कब्जेदारों के साथ अपने गठबंधन के कारण उनसे अलग थलग पड़ गया था। सबसे प्रसिद्ध हम यीशु के दृष्टांत पर विचार करते हैं। इसे अक्सर उड़ाव पुत्र का दृष्टांत कहा जाता है, लेकिन मैं इसे दो भाइयों का दृष्टांत कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि सच तो यह है कि उस कहानी में उन लड़कों में से कोई भी वास्तव में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। फरीसियों के जवाब में, और शायद यह शास्त्री और फरीसी थे जो यीशु की पापियों और कर वसूलने वालों के साथ खाने की प्रवृत्ति के बारे में शिकायत कर रहे थे, जिन्हें फरीसी किसी दूसरे तरह के इंसान मानते थे जो हमारे जैसे समूह से संबंधित नहीं थे। यीशु ने यह कहानी शास्त्रियों और फरीसियों को याद दिलाने के लिए सुनाई कि वे पापी और कर वसूलने वाले भी यहूदी हैं। वे इसराइल राष्ट्र का हिस्सा हैं। वे अब्राहम के विस्तारित रिश्तेदारी समूह का हिस्सा हैं। और इसलिए वास्तव में उनके बारे में सोचने का एक बेहतर तरीका उन पापियों और कर संग्रहकर्ताओं के रूप में नहीं बल्कि हमारे भाइयों और बहनों के रूप में है। इसलिए वह दो भाइयों की कहानी बताता है जो एक दूसरे से इस तरह से असहमत हैं कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहा है जो उस पिता का सम्मान करता है जो उन दोनों को एक दूसरे का भाई बनाता है। अब शायद सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जिसके बारे में हम नए नियम की व्याख्या के लिए सोच सकते हैं वह है लोकाचार, वह नैतिकता जो प्राचीन दुनिया में रिश्तेदारी संबंधों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती थी। जहां कहीं भी रिश्तेदारी का चक्र स्थापित किया गया था वहां रिश्तेदारों को एक दूसरे के साथ उनके संबंधों में मार्गदर्शन करने के लिए बाहरी लोगों के साथ उनके संबंधों को निर्देशित करने की तुलना में एक अलग नैतिकता अपनाई गई थी। यह अंतः इस विश्वास में निहित था कि रिश्तेदारी का मतलब एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना है, न कि अपने रिश्तेदारों की कीमत पर अपने भले के लिए। हम यहां सामाजिक संपर्क सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा के बुनियादी मॉडल पर आते हैं। हमने इस श्रृंखला में अपने पहले व्याख्यान में उल्लेख किया था कि प्राचीन दुनिया में कई चीजों को सीमित वस्तुओं के रूप में माना जाता था। किसी चीज को अधिक पाने के लिए आपके पास कम होना चाहिए, चाहे वह अनाज हो, पैसा हो, सम्मान हो या कुछ और। और इसलिए एक सीमित वस्तु अर्थव्यवस्था विशेष रूप से उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए एक तरह के डिफॉल्ट मोड के रूप में प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। हालांकि परिवारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा न करें ताकि एक दूसरे की कीमत पर लाभ कमाएं, बल्कि सहयोग करें ताकि पूरी रिश्तेदारी इकाई को उन वस्तुओं तक अधिक पहुंच प्राप्त हो जो उसे चाहिए या चाहिए। पूरी रिश्तेदारी इकाई की ताकत, एकता और भलाई उसके सभी सदस्यों की सामान्य भलाई है। इस संदर्भ में भाई बहनों के बीच के रिश्ते को अक्सर प्राचीन दुनिया में मनुष्यों के बीच सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण बंधनों में से एक माना जाता था। यह दोस्ती का प्रतीक था। दोस्तों के बीच सभी चीजें समान होती थीं। मित्र समान मूल्यों और प्रतिबद्धताओं को साझा करते थे। मित्र एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते थे और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन साझा करते थे। उदाहरण के लिए अरस्तु के निकोमैचेन एथिक्स में भाई बहनों की चर्चा शिखर के रूप में की गई थी जो व्यवहार में मित्रता का आदर्श था। अब 20वीं और 21वीं सदी के अमेरिका में और शायद कनाडा और पश्चिमी यूरोप में भी हम भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता के विचार को स्वीकार करते हैं। अब मेरी पत्नी और मेरे तीन बेटे हैं, और हम आप जानते हैं मैं उनके सामने भाइयों के व्यवहार के प्राचीन आदर्शों को रखता हूँ, लेकिन वास्तव में कई मायनों में वे भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता की पटकथा को निभाते हैं जो पश्चिम में स्वीकार्य और आम बात हो गई है। और शायद एक अर्थ में, वास्तव में निश्चित रूप से एक अर्थ था जिसमें प्राचीन दुनिया में भाई प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन वे बहुत सावधान थे। नैतिकतावादी बहुत सावधान थे। परिवार भाई बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा न देने के लिए बहुत सावधान थे, जिसका मतलब था कि एक भाई दूसरे पर जीत हासिल कर ले या दूसरे की कीमत पर कुछ हासिल कर ले। इसलिए वे किसी उद्यम में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन हमेशा इस तरह से कि पूरे परिवार की भलाई हो, न कि एक भाई दूसरे की कीमत पर जीत हासिल करे। जहां हम आम तौर पर भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में बात करते हैं, वहीं प्राचीन दुनिया में लोग आम तौर पर कैडमीन की जीत के बारे में बात करते थे। अब यह वाक्यांश हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता जब तक कि हमने बहुत ज्यादा ग्रीक नाटक न पढ़े हों, लेकिन अगर आप ओडिपस की कहानी से परिचित हैं तो आप शायद जानते होंगे कि यह सिर्फ ओडिपस और उसकी पीढ़ी के बारे में नहीं है, यह उसके बच्चों के साथ जो हुआ उसके बारे में है। और इसे कैडमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओडिपस कैडमस का वंशज है, और इसलिए ओडिपस अपनी त्रासदी के बाद ओडिपस के बेटों ने खुद को युद्ध के विपरीत पक्षों में पाया। उनमें से एक ने फारसियों का पक्ष लिया जो थेब्स पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, और निश्चित रूप से थेब्स की सेना के साथ एक तरफा, और उन्होंने युद्ध में एक दूसरे को मार डाला। इसे कैडमीन विजय के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वास्तव में भाई बहन के रिश्तों के सबसे निचले बिंदु को दर्शाता है। हर कोई जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर आप अपने भाई या बहन के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप जीत नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जीत हासिल करना असंभव है। इसलिए प्राचीन दुनिया में नैतिकतावादियों ने भाइयों और बहनों के बीच एक दूसरे के हितों की तलाश करने के मूल्य को स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया। सम्मान के प्रति संवेदनशील समाज में भी भाई बहनों को दूसरे व्यक्ति के सम्मान को आगे बढ़ाना था। इसलिए एक भाई के रूप में मैं न केवल अपने स्वयं के सम्मान को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बल्कि अगर मेरे रास्ते में कुछ आता है तो मैं अपने भाई या बहन को उस सम्मान में हिस्सा लेने का मौका देने का प्रयास करूंगा जो मैंने प्राप्त किया है या कुछ विशेषाधिकारों तक पहुंच प्राप्त की है। निश्चित रूप से मैं कभी भी किसी बहन या भाई की कीमत पर कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। आप पहले से ही देख रहे होंगे कि मैं ईसाई रिश्तेदारी के संबंध में कहा जा रहा हूं जब हम चर्च के भीतर एक दूसरे को भाई और बहन कहते हैं और इसे वास्तविक बनाने का क्या मतलब है। रिश्तेदारों के लोकाचार का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू सभी चीजों में सहयोग के साथ साथ विश्वास था, क्योंकि रिश्तेदार एक दूसरे के और परिवार के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। प्राचीन दुनिया में धोखे और झूठ को अक्सर बाहरी लोगों के खिलाफ अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त रणनीति माना जाता था। उदाहरण के लिए अपोक्रिफल पुस्तक जूडिथ में जूडिथ दुश्मन जनरल होलोफर्नेस के इतने करीब पहुंचने के लिए अपने दांतों से बाएं और दाएं झूठ बोलती है ताकि उसका सिर काट सके। वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, फिर से स्पॉइलर अलर्ट, मुझे खेद है, वह अपने गांव की भलाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जिसे इस जनरल और उसकी सेना ने घेर रखा है। उसके बहुत करीब पहुंचने के लिए छल का इस्तेमाल करना पूरी तरह से स्वीकार्य है, और अपने खुद के रिश्तेदार समूह की भलाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय है। हालांकि अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ छल या झूठ का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक होगा। इसका मतलब है वास्तव में अपने रिश्तेदारों को बाहरी व्यक्ति के रूप में मानना और एक दूसरे की भलाई के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के भरोसे और प्रतिबद्धताओं को तोड़ना। परिवार को एकता, सद्भाव, मूल्यों को साझा करने और वस्तुओं को साझा करने से चिह्नित किया जाना था। भाइयों और बहनों को समान आदर्श, मूल्य और लक्ष्य साझा करने थे। प्राचीन साहित्य में अक्सर भाइयों को एकमत होने का आदेश मिलता है। और मैं सिर्फ ईसाई साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ग्रीको रोमन नैतिक साहित्य की बात कर रहा हूँ। अपनी एकता को बनाए रखने और हर कीमत पर अपने सामंजस्य को बनाए रखने के लिए भाई या बहन के प्यार को खोने और रिश्तेदारों की विशेषता को तोड़ने या तोड़ने की तुलना में विरासत का हिस्सा खोने के लिए बहस हारना बेहतर है। यह एकता और सद्भावना रिश्तेदारों के बीच संसाधनों के बंटवारे में भी व्यक्त होती है, जैसा कि किसी को भी जरूरत हो सकती है। जब संघर्ष होता है या चोट लगती है तो भाई बहनों को माफी मांगनी चाहिए और सुलह करनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के अपमान या शर्मनाक कृत्यों को बाहरी लोगों से छिपाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति धैर्य से पेश आना चाहिए। यह इस दुनिया में बाहरी लोगों के साथ व्यवहार करने या उनके प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीके से बहुत अलग है। यह भाई बहन के प्यार की नैतिकता पर एक बेहतरीन पाठ है, जो इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि फिलाडेल्फिया, भाइयों और बहनों का प्यार नए नियम में एक बहुत ही प्रमुख नैतिक शब्द है। एक बेहतरीन पाठ के लिए प्लूटार्क के भाईचारे के स्नेह पर लिखे गए ट्रैक्ट को पढ़े, जिसे कभी कभी भाईचारे के प्यार के रूप में भी जाना जाता है। यह प्राचीन दुनिया में रिश्तेदारों के आदर्शों की एक अद्भुत झलक है। आइए हम सब मिलकर प्राचीन घर के बारे में सोचें, यह कैसा दिखता था और कैसे चलता था। अरस्तु ने फिर से अपने निकोमैचेन एथिक्स में घर और उसके कर्मचारियों के बारे में बात की है और उनकी भूमिकाएं और यह कैसे काम करता है। वह एक घर के बारे में बात करते हैं जिसमें कम से कम पति और पत्नी, पिता और बच्चे, स्वामी और दास शामिल होते हैं। उनके वर्णन में उल्लेखनीय बात यह है कि प्रत्येक जोड़े का एक सदस्य वास्तव में एक ही व्यक्ति है। पिता, पति, स्वामी, यह सब एक ही व्यक्ति है, जो इसलिए घर का केंद्रीय केंद्र है। बेशक इस बुनियादी घर के कई संभावित विस्तार हैं। अविवाहित भाई बहनों और महिला रिश्तेदारों का एक घर का हिस्सा होना और उस इकाई के हिस्से के रूप में पहले वर्णित घर के साथ रहना बहुत आम बात थी। इसमें अक्सर पति या पत्नी में से कोई भी जीवित माता पिता शामिल होता था, और कभी कभी तो इसमें विवाहित भाई बहन और उनके बच्चों को भी एक बड़ी इकाई में शामिल कर लिया जाता था। जब विवाह की बात आती है तो यहूदी जातीय समूह के भीतर, यहूदी लोगों के भीतर अक्सर जनजातियां कबीले के भीतर विवाह करने की प्रवृत्ति रखते थे। फिर से टोबिट की अपोक्रिफल पुस्तक की ओर मुड़े, जो संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी की नैतिकता की तुलना में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की नैतिकता को अधिक दर्शाती है। टोबिट एक विदेशी से विवाह करना एक तरह का व्यभिचार मानता है। यहूदी के लिए यहूदी जातीय समूह से बाहर, यहां तक कि जनजाति से बाहर विवाह करना पाप के समान था। विवाह आम तौर पर तय किए जाते थे क्योंकि विवाह परिवारों को एक साथ लाते थे और उन्हें वास्तव में परिवारों के बीच गठबंधन के रूप में समझा जाता था, न कि दो प्रेमी पक्षियों द्वारा व्यक्तिगत प्रेरणाओं के आधार पर निर्धारित किए गए कार्य के रूप में। और औरतें हमेशा ही वैचारिक रूप से किसी न किसी पुरुष के घर में ही रहती हैं, शादी से पहले अपने पिता के घर में, शादी के बाद अपने पति के घर में, और अगर तलाक हो भी जाए तो उसे अपने पिता के घर वापस जाना पड़ता था। उस समय अलग अलग लोगों के बीच तलाक को अलग अलग तरीके से निपटाया जाता था। यहूदियों में तकनीकी रूप से केवल पति ही पहल कर सकते थे, इसलिए यहूदिया में, उन क्षेत्रों में जहां हम मूसा के कानून के अनुसार जीने के बारे में बहुत सचेत थे, जहां तक विदेशी उत्पीड़कों ने अनुमति दी थी, पत्नियों के लिए तलाक की पहल करना बहुत मुश्किल था। यह संभवतः प्रवासी यहूदी समुदायों में आसान था। यहूदी समुदाय जितना अधिक अल्पसंख्यक है, उतना ही अधिक प्रभावशाली संस्कृति की कानूनी व्यवस्था को आकर्षित किया जा सकता है। हालांकि रोमनों और यूनानियों में पति या पत्नी में से कोई भी तलाक की पहल कर सकता था, और इसका मतलब आम तौर पर यह होता था कि पत्नी अपने सबसे करीबी जीवित पुरुष रिश्तेदार के घर लौट जाती थी। तो पिता, अगर वह अभी भी जीवित था, या भाई अगर पिता की मृत्यु हो गई थी, वह अपने दहेज के साथ वापस लौटती थी, जो दुल्हन के पिता की विरासत का हिस्सा था, और दुल्हन इसे अपने साथ जहां भी जाती थी ले जाती थी। इसलिए यह केवल तभी नई संपत्ति का हिस्सा बन जाता था जब विवाह तब तक चलता जब तक कि मृत्यु जोड़े को अलग न कर दे। प्राचीन घराने और आधुनिक अमेरिकी घराने के बीच एक बहुत बड़ी भिन्नता यह है कि घराने उत्पादन की इकाइयां थे, न कि केवल उपभोग की इकाइयां। मेरा घर मेरा मतलब है, ईमानदारी से आप जानते हैं, हम पांच लोग, हम वास्तव में रिसाइकलिंग और कचरे के अलावा कुछ भी साथ मिलकर नहीं बनाते हैं, लेकिन हम साथ मिलकर उपभोग करते हैं। लेकिन प्राचीन दुनिया में हमारे जैसे घर भी उत्पादन की एक बुनियादी इकाई होगी। आप इसे सबसे ऊंचे कुलीन स्तर पर विचार कर सकते हैं, जहां एक सीनेटर और उसका परिवार खुद रोम में रहता है और वास्तव में कभी देश की संपत्ति नहीं देखता है। लेकिन संपत्ति का एक हिस्सा, घर का एक हिस्सा, मुझे कहना चाहिए, केवल पति और पत्नी, पिता और बच्चे नहीं थे, बल्कि मालिक और दास थे। और उस कुलीन सीनेटर के पास सैकड़ों सैकड़ों गुलाम हो सकते थे, जो रोम से दूर दूर दराज के इलाकों में कई जागीरों में काम करते थे। और इसलिए कुलीन घर भी उत्पादन का घर था, जिसमें बड़े पैमाने पर कृषि उद्यम उस विस्तारित, बहुत विस्तारित घरेलू इकाई से निकलते थे। अब एक बहुत ही विनम्र सेटिंग में जाए, एक कारीगर घर। उदाहरण के लिए, यहां तक कि जिस घराने को हम यीशु का अपना घराना मानते हैं, वह भी बहुत संभव था। शिल्पकार जोसेफ के साथ उसके एक या एक से अधिक बेटे भी उस शिल्प में शामिल होते थे, जो मिलकर आय बढ़ाने और साथ मिलकर काम करके उस घराने को चलाते थे। उनके साथ साथ घर की महिलाएं, इसलिए मरियम और यीशु की अनाम सौतेली बहनें भी किसी न किसी तरह से योगदान देती थीं, या तो पुरुषों के काम को संभालने में मदद करके। कभी कभी यह जानना वाकई आश्चर्यजनक होता है कि उत्पादन और इस तरह की चीजों के लिए इन घरों में कितनी महिलाएं वास्तव में हिसाब किताब रखती थीं। या प्राचीन दुनिया में महिलाओं के काम के रूप में संदर्भित कार्यों में भाग लेकर, इसलिए वे पुरुषों के साथ साथ अपने खुद के शिल्प में संलग्न हो सकती हैं, ताकि वे एक उत्पादक इकाई के साथ साथ एक उपभोक्ता इकाई भी बन सकें। उदाहरण के लिए, हम शमौन के घराने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसे बाद में पतरस और उसके भाई अंद्रियास के नाम से जाना गया। उनका पूरा परिवार संभवतः मछली पकड़ने के व्यवसाय में किसी न किसी तरह से शामिल था, जैसा कि निश्चित रूप से जेबेदी का घराना था, जिसके दो बेटे उसके साथ नाव में थे। और इन परिदृश्यों में यह फिर से संभव है कि घर की महिलाएं किसी न किसी तरह से मछली के पारिवारिक व्यवसाय में भाग लेती थीं। उदाहरण के लिए, मैं हाल ही में मगदला में था, जहां एक तरह का घरेलू औद्योगिक क्षेत्र खोजा गया था, और यह एक मछली पकड़ने वाला शहर था, ठीक वैसे ही जैसे संभवतः कफरनहूम था। घरेलू संरचनाओं के भीतर एक कमरा था, जो मछलियों को सुखाने, नमक लगाने और संरक्षित करने के लिए समर्पित था। तो बहुत संभव है कि जेबेदी परिवार की महिलाएं भी पारिवारिक व्यवसाय के उत्पादन में सहायता करने में लगी हुई थीं। अब पति/पिता/स्वामी अंतः घरेलू प्रबंधन के प्रभारी हैं। प्राचीन दुनिया का विज्ञान जो हमें हमारा शब्द अर्थशास्त्र देता है, इसे ओइकोनोमिया कहा जाता है, ओइकोस घर का नियम या प्रबंधन। नैतिकतावादी इस व्यक्ति के अधिकार को कर्तव्य, परिश्रम और परोपकारी देखभाल के संदर्भ में बोलते हैं। बेशक व्यवहार में घरों के ये मुखिया अपने अधिकार को अपने स्वयं के गुण या उनकी कमी को दर्शाते हुए तरीके से धारण करते थे, और बेशक यह एक सख्त पदानुक्रमित और पितृसत्तात्मक समाज है। फिर से अगर हम अरस्तु की ओर मुड़े और पढ़े कि उन्होंने अपने निकोमैचिन एथिक्स में घर के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने घर के भीतर पुरुष को प्राकृतिक शासक और महिला को प्राकृतिक विषय के रूप में बताया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से पुरुष और महिला जन्म से ही बनते हैं, उनकी प्राकृतिक प्रतिभाओं और सीमाओं के साथ वे कहते हैं, मैं जल्दी से यह जोड़ना चाहता हूं कि पुरुष का प्रभुत्व होना और महिला का नेतृत्व करना उचित है। वह बच्चों और दासों पर पिता के शासन की तुलना एक निरंकुश राजा के अपने विषयों पर शासन करने के समान करता है। अरस्तु एक पति के पत्नी पर शासन की तुलना नागरिकों के बीच संवैधानिक शासन से करता है, जो मूल्य में समान है लेकिन शक्ति में नहीं। इसलिए वह वहां कुछ अंतर देखता है, लेकिन फिर भी घर में बाकी सभी पर पतिस्वामी पिता के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। यहूदी लेखक वास्तव में अपने दावों में अधिक चरमपंथी और अधिक व्यापक हैं। उदाहरण के लिए जोसेफस, जब वह संक्षेप में घरेलू प्रबंधन के बारे में लिखता है, तो लिखता है कि महिला, कानून कहता है, सभी मामलों में पुरुष से कमतर है। इसलिए उसे विनम्र होना चाहिए, न कि उसके अपमान के लिए, बल्कि उसे निर्देशित करने के लिए, क्योंकि अधिकार ईश्वर ने पुरुष को दिया है। अब ग्रीक, रोमन और यहूदी नैतिकतावादी सभी इस बात पर सहमत हैं कि पति को अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अरस्तु महिलाओं की हीनता के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन जोसेफस ऐसा करते हैं। इसलिए इन प्राचीन स्रोतों में इस बात को लेकर कुछ भिन्नता है कि महिला की स्थिति को किस तरह से समझा जाता है। मैंने अक्सर यह कहते सुना है कि प्राचीन दुनिया में महिलाओं को संपत्ति के रूप में माना जाता था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी तक कोई ग्रीको रोमन या यहूदी लेखक नहीं मिला है जिसने वास्तव में अपने घरों में महिलाओं के बारे में बात करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया हो। वे दासों को संपत्ति के रूप में बात करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे वास्तव में महिलाओं के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शायद यह एक तरह की रूढ़ी है जिसे हम प्राचीन दुनिया पर थोपते हैं, जिसकी फिर से जांच करने की जरूरत है। पत्नियों को घर के प्रबंधन में आवश्यक भागीदार के रूप में देखा जाता था, लेकिन माना जाता है कि हमेशा उनके लिंग के आधार पर उन्हें जूनियर भागीदार के रूप में देखा जाता था, बिना उनकी प्रतिभा और योग्यता को ध्यान में रखे। अब प्राचीन दुनिया में महिला पत्नी के लिए एक काफी अच्छी तरह से व्यक्त आदर्श था, और इस स्कोर पर ग्रीक, लैटिन और यहूदी लेखकों के बीच काफी हद तक एकमत है। इस आदर्श में एक विशेषता समर्पण है, जैसा कि हम जोसेफस के उद्धरण से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्लूटार्क इसे संगीत के सादृश्य का उपयोग करके थोड़ा और कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। विवाह पर अपनी सलाह में वह लिखता है कि जब दो स्वर एक साथ बजाए जाते हैं तो राग निचले स्वर से संबंधित होता है। इसी तरह एक अच्छे घर में किया जाने वाला हर काम भागीदारों की सहमति से किया जाता है, लेकिन इसमें पति का नेतृत्व और निर्णय शामिल होता है। संयोग से हम देख सकते हैं कि प्राचीन दुनिया में संगीत कितना अलग था। मेरे अनुभव में मैं सोप्रानो के साथ राग और उनके नीचे के हर दूसरे स्वर भाग में सामंजस्य रखने का आदी हूँ, लेकिन जाहिर है ग्रीक और रोमन संगीत विपरीत तरीके से संचालित होता था, जिसमें राग निचले बजाने वाले वाद्य यंत्र या निचले गायन स्वर को दिया जाता था और उच्च गायन स्वर को सामंजस्य या डिस्केंट दिया जाता था। इसलिए प्लूटार्क इस छवि का उपयोग इस छवि को स्पष्ट करने के लिए करता है कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे से संबंध रखते हैं। वह इसे नरम करने की कोशिश करता है। सब कुछ सहमति से होना चाहिए, लेकिन सहमति में नेतृत्व पुरुष ही करता है। पत्नी या महिला के इस प्राचीन आदर्श का एक और पहलू मौन और बोलने में संकोच है। अरस्तू ने उस कवि को मंजूरी दी जिसने लिखा था कि मौन एक महिला की महिमा है और दो या तीन शताब्दियों बाद एक बहुत ही अलग वातावरण में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जेरूसलम में बेन सिराह ने लिखा कि एक चुप पत्नी भगवान की ओर से एक उपहार है और उसके आत्मनुशासन से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। जाहिर है मौन आत्माभिव्यक्ति का संयम, समर्पण और पति के नेतृत्व में आने की प्रतीक्षा के साथ चलता है। इस आदर्श का तीसरा पहलू एकांत है। महिला खुद को घर के निजी स्थानों तक सीमित रखती है, या अगर सार्वजनिक स्थान पर है तो महिलाओं के लिए उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे कि बाजार या कुछ रेगिस्तानी समाजों में कुआं। पहली शताब्दी ईस्वी के पहले भाग में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में लिखने वाले यहूदी लेखक फिलो ने लिखा है कि महिलाएं घर के अंदर रहने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जिसके भीतर बीच का दरवाजा एक आंतरिक दरवाजा, बीच का दरवाजा युवतियों द्वारा अपनी सीमा के रूप में लिया जाता है और बाहरी दरवाजे को वे लोग लेते हैं जो पूर्ण रूप से नारीत्व प्राप्त कर लेते हैं। प्लूटार्क एक गैर यहूदी यूनानी लेखक जो लगभग 100 ईस्वी में लिखते हैं कि एक अच्छी महिला को सबसे अधिक तब देखा जाना चाहिए जब वह अपने पति के साथ हो और घर पर रहे, या जब वह दूर हो तो उसे छिपाया जाए। तो फिर पुरुषों ने सार्वजनिक स्थानों पर तूफान मचा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए विचार काफी अलग था। और फिर इस आदर्श का एक अंतिम और अपरिहार्य पहलू यौन शुद्धता है। एक अनाम नियोपायथागोरस नैतिकतावादी ने लिखा कि एक महिला का सबसे बड़ा गुण शुद्धता है, जिसका अर्थ है यौन विशिष्टता, विवाह से पहले शुद्धता और अपने जीवन काल में एक पुरुष के साथ यौन संबंध। और यह बात ग्रीक, लैटिन और यहूदी ग्रंथों में भी स्पष्ट है। हमने पिछले व्याख्यान में 4 मैकाबीज के बारे में बात की थी, एक ऐसी किताब जिसमें अन्य बातों के अलावा एक महिला की प्रशंसा उसकी मर्दानगी, उसके साहस, उस बहादुरी के लिए की गई है जो युद्ध के मैदान में पुरुषों द्वारा दिखाए गए साहस को शर्मसार कर देगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लेखक को अंत में उसके महिला गुणों पर जोर देने के लिए वापस आना ही पड़ता है। और इसलिए पिछले अध्याय में हमने उसे यह कहते हुए पढ़ा, मैं एक शुद्ध कुंवारी थी और अपने पिता के घर से बाहर नहीं जाती थी। वहां एकांत है जो शुद्धता को बढ़ावा देता है। लेकिन मैंने उस पसली की रक्षा की जिससे महिला बनी है। किसी भी बहकावे में आकर मुझे रेगिस्तान के मैदान में भ्रष्ट नहीं किया जा सका, न ही विध्वंसक धोखेबाज सांप ने मेरी कौमार्य की पवित्रता को दूषित किया। अपनी परिपक्वता के समय मैं अपने पति के साथ रही। इसलिए जीवन भर एक ही पुरुष के लिए और उसके साथ यौन विशिष्टता का वह विचार। हम विवाह के बारे में सोचने से और फिर विशेष रूप से प्राचीन दुनिया में पत्नी के आदर्श से बच्चों और उनकी वास्तविकता पर लौटते हैं। प्राचीन घर में बच्चे अपने माता पिता, विशेष रूप से पिता के पूर्ण अधिकार में थे और उन्हें अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझना सिखाया जाता था। उदाहरण के लिए अरस्तू कहते थे कि बच्चे कभी भी अपने माता पिता के उस ऋण को नहीं चुका सकते जो उन्हें जीवन के उपहार के रूप में मिलता है। पालन पोषण और लालन पालन की तो बात ही छोड़िए। और इसलिए बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और अपने माता पिता के जीवन भर उनके प्रति सभी रूपों में कृतज्ञता दिखानी चाहिए। यह पुत्र परमार्थ का एक विशेष चिन्ह था, जो एक बेटे या बेटी के रूप में अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के अपने कर्तव्य को पूरा करता है। बच्चों को सभी आवश्यक मामलों में अपने माता पिता के समान माना जाता था। हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे एक सम्माननीय माता पिता का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन दुनिया में किसी व्यक्ति के सम्मान को चुनौती देने का एक आम तरीका उसके माता पिता के बारे में बात करना है। शायद इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन उदाहरण के लिए जॉन के सुसमाचार पर विचार करें, जहां यीशु के आलोचक अब्राहम की संतान होने का दावा करते हैं और यीशु जवाब देते हैं, तुम शैतान की संतान हो। सम्मान पर हमला करने के तरीके के रूप में माता पिता पर हमला करना। प्राचीन दुनिया में शिक्षा में बहुत विविधता थी। सभी लोगों के लिए इसकी शुरुआत घर से होती थी, लेकिन अक्सर कम साधन वाले परिवारों के लिए यह घर तक ही सीमित रहती थी। इसमें पारिवारिक व्यापार सीखना और व्यापार करने के लिए पर्याप्त साक्षरता शामिल होती अगर वह प्रासंगिक होती, लेकिन उस बड़े समूह के मूल्य और नैतिकता भी शामिल होती जिससे वह परिवार संबंधित था। धार्मिक शिक्षा घर का मामला था। सबसे पहले हम यहाँ व्यवस्था विवरण 6:6-9 पर विचार कर सकते हैं, जो एक शानदार उदाहरण है। यहूदी धर्म के भीतर वह मुख्य पाठ यहूदी धर्म के पंथ के सबसे करीब है। यहाँ इज़राइल, प्रभु हमारा परमेश्वर, प्रभु एक है, या प्रभु हमारा अकेला परमेश्वर है। लेकिन अगली बात या लगभग अगली बात जो कहती है, तुम अपने बच्चों को अपने प्रभु की आज्ञाएं सिखाओगे, और माता पिता को अगली पीढ़ी को बताने के लिए धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अगर हम फिर से 4 मैकाबीज 18:10-19 में देखें, तो हम व्यवस्था विवरण 6 के नुस्खे का एक अद्भुत चित्र देखेंगे, जिसे एक माँ याद करती है कि कैसे इस घर के पिता ने लगातार और धैर्यपूर्वक अपने 7 बेटों में इज़राइल के धर्म ग्रंथों में निहित मूल्यों और कहानियों और आशा को डाला, इस प्रकार उन्हें उस तरह के लोग बनाया जो वे उस भाग्यशाली दिन पर साबित हुए जब उन्होंने धर्मनिष्ठता के लिए मरना चुना। मामूली रूप से समृद्ध या उससे भी अधिक समृद्ध परिवारों के पुरुष बच्चों के लिए शिक्षा अधिक व्यापक हो सकती है। ऐसे कई परिवार, और अब हम निश्चित रूप से उच्च वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, शायद ऊपरी 2-5% परिवार कई गुलाम रखने का जोखिम उठा सकते हैं। यदि उनके बच्चे होते तो उनमें से एक गुलाम शिक्षक के रूप में काम कर सकता था, जो एक ऐसा गुलाम होता जिसका मुख्य कर्तव्य बच्चों को शिष्टाचार सिखाना और यह सुनिश्चित करना होता कि जब बच्चों को चीजें सिखाई जाने लगें तो बच्चे कैसे लाइन में रहें, यह सुनिश्चित करना कि बच्चे अपना होमवर्क करें और अगले दिन पूरी तरह से तैयार होकर अपने वास्तविक शिक्षक के पास वापस जाएं। हम्मा, मुझे लगता है कि शिक्षक एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन फिर शिक्षक वास्तव में शिक्षक नहीं था। हमारा शब्द शिक्षण शास्त्र इसी से लिया गया है, लेकिन यह वास्तव में एक गलत संबंध है। असली शिक्षक घर के बाहर होते थे, और शिक्षक अनुशासनकर्ता होता था जो सुनिश्चित करता था कि पाठ सीखे जाएं और होमवर्क पूरा हो जाए। अन्य बातों के अलावा ग्रीक या रोमन शहर या कॉलोनी के नागरिकों के लिए वास्तव में लगभग हर शहर में उस शहर के नागरिकों के बहुत सीमित दायरे के लिए सार्वजनिक शिक्षा की एक मजबूत व्यवस्था थी। कई प्राचीन शहरों में अभी भी एक व्यायामशाला के खंडहर हैं, एक व्यायामशाला जो निश्चित रूप से एथलेटिक्स सीखने, खेल का अभ्यास करने और शारीरिक रूप से फिट होने का स्थान था, लेकिन यह सब शिक्षा के एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा था। व्यायामशाला एक ऐसी जगह भी थी जहां नागरिक व्याकरण, वक्तृत्व, तर्कशास्त्र, दर्शन, साहित्य, ज्यामिति, संगीत और प्राचीन दुनिया के पूरे पाठ्यक्रम को सीखते थे। विभिन्न संदर्भों में अलग अलग तरह के स्कूल भी थे। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि यहूदी संदर्भ में ऐसे स्कूल थे जो सीखने के इन अन्य क्षेत्रों में से कुछ को शामिल कर सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से टोरा पढ़ाने, इज़राइल की ज्ञान परंपरा को पढ़ाने और शायद तब सबसे अच्छे रूप में इज़राइल की ज्ञान परंपरा और टोरा की धार्मिक शिक्षा को अन्य प्रकार की गैर स्वदेशी शिक्षा के साथ जोड़ने पर केंद्रित थे। हम घर के सबसे निचले स्तर पर आते हैं। इसे किसी और तरीके से नहीं कहा जा सकता, गुलामी। प्राचीन दुनिया में गुलामी बहुत आम थी। अनुमान है कि भूमध्य सागर के आसपास हर 5 में से एक व्यक्ति गुलाम था। कुछ शहरी क्षेत्रों में यह 4 में से एक या कुछ अनुमानों के अनुसार 3 में से एक तक भी बढ़ सकता है। गुलामी अक्सर सैन्य विजय या विद्रोह के दमन का परिणाम थी। इसलिए उदाहरण के लिए, जैसे जैसे रोम ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, जिन लोगों पर उसने बलपूर्वक विजय प्राप्त की, उन्हें अक्सर साम्राज्य के भीतर गुलामों के रूप में बेच दिया गया। इसलिए जैसे जैसे रोम का विस्तार हुआ, पूरे साम्राज्य के लिए दासों की उपलब्धता भी बढ़ती गई। टैसिटस और जोसेफस में आप पढ़ सकते हैं कि दास व्यापार में शामिल लोग सेना के साथ यात्रा करते थे और उसका अनुसरण करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सेना कहाँ जाती है, दास बनाए जाएंगे, और वे वहां रहकर जमीनी स्तर पर नकद लाभ कमाना चाहते थे और सेना से सीधे दास खरीदना चाहते थे और फिर उन्हें अपने लाभ के लिए साम्राज्य के केंद्र के करीब वापस बेचना चाहते थे। दासता किसी आपराधिक कृत्य के लिए दंड लगाने का परिणाम भी हो सकती है। यह कई तरह के अपराधों के लिए एक आम सजा थी। अगर आप गुलामों के घर पैदा हुए हैं तो आप गुलाम ही हैं। इसलिए गुलामों के बीच साधारण प्रजन इसके लिए एक और स्रोत था। और ऋण न चुकाने पर, खास तौर पर मिस्र में, अक्सर चूककर्ता को गुलाम बना लिया जाता था, जिसे आंशिक या पूरा ऋण चुकाने के लिए बेच दिया जाता था, और फिर बेशक वह किसी और का हो जाता था। प्राचीन अर्थव्यवस्था गुलामी के कारण अस्तित्व में थी और पूरी तरह से गुलामी पर आधारित थी। इसलिए जब हम प्राचीन ग्रीस, हेलेनिस्टिक दुनिया, रोम की संपत्ति और रोम से लाभ उठाने वालों के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वे सभी, कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से, कई मामलों में सीधे तौर पर, रोमन साम्राज्य में गुलामी की संस्था के कारण लाभ कमा रहे थे और अरस्तु के समय में वापस जाते हैं, जो प्राचीन दुनिया में लगभग हर चीज के लिए एक महान सूचनादाता थे, क्योंकि उन्होंने लगभग हर चीज पर लिखा था। अरस्तु दास को एक जीवित उपकरण के रूप में बोलते हैं। यह एक कुख्यात परिभाषा है, लेकिन मूल रूप से यह इसे पकड़ लेती है। यह बिल्कुल वही है जो अरस्तु के लिए एक गुलाम है। गुलाम हथौड़े से इस मायने में अलग है कि गुलाम जीवित है और हथौड़ा नहीं। लेकिन अधिकारों के मामले में और मालिक की संपत्ति पर मालिक के अधिकार की सीमा के मामले में गुलाम और हथौड़े में कोई खास अंतर नहीं है। अरस्तु का तर्क है कि कुछ लोग स्वभाव से गुलाम होते हैं, जबकि अन्य लोग किस्मत के कारण। कहने का मतलब यह है कि शायद कुछ देश सिर्फ गुलामों को पालते हैं, ऐसा उनका अनुमान है। लेकिन वह ऐसे लोगों को भी जानता है, गुलामों को, जो गुलाम नहीं हैं। वे किसी दुर्भाग्य के कारण गुलामी में चले गए हैं। उदाहरण के लिए सैन्य विजय। अरस्तु के दिनों में शहर राज्य पर शहर राज्य की विजय या अरस्तु के निवास स्थान के पूर्व में दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर फारसी साम्राज्य का आगे बढ़ना दास मालिक की पूरी शक्ति के अधीन था। लेकिन नैतिकतावादियों ने दास मालिकों की ओर से उस अधिकार का सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की शिक्षा देने की कोशिश की। उदाहरण के लिए अरस्तु लिखते हैं कि इस अधिकार का दुरुपयोग दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है, क्योंकि भाग और संपूर्ण, शरीर और आत्मा के हित एक समान हैं, और दास स्वामी का एक अंग है, उसके शारीरिक ढांचे का एक जीवित लेकिन अलग अंग है। तमाम नैतिकताओं के बावजूद दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा सकता था, और जब ऐसा होता था तो कोई कानूनी उपाय नहीं था। कुछ नैतिकतावादियों ने स्वामी और दासों के बीच पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देकर स्वामी और दासों के बीच शक्ति असंतुलन का मुकाबला करने की कोशिश की। इसलिए जिस तरह के रिश्ते के बारे में हमने संरक्षण या दोस्ती या पारस्परिकता के तहत बात की थी, उसे स्वामीदास संबंध में पेश किया जाएगा, क्योंकि इन लेखकों ने इस असमान संबंध के ढांचे के भीतर दोनों पक्षों की ओर से दयालुता का आदान प्रदान करने की इच्छा पैदा करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि हम लूका 7 की कहानी में इसका कुछ हिस्सा देखते हैं, जहां एक सूबेदार अपने दास के कल्याण के लिए चिंतित है, लेकिन इतना चिंतित है कि वह काफी हद तक आगे बढ़ जाता है और यहां तक कि कुछ हद तक अपने सम्मान को भी दरकिनार कर देता है, अपने दास के लिए वह हासिल करने के लिए जिसकी उसे जरूरत है, यानी उपचार। हालांकि इस तथ्य को कोई नहीं बदल सकता कि एक दास के जीवन के सभी पहलू, यहां तक कि उसका प्रजनन भी एक स्वामी की शक्ति और अधिकार के अधीन था और इसलिए पूरी तरह से इस स्वामी के गुण या गुण की कमी की दया पर था। दासों को बहुत तरह के काम दिए जा सकते थे और वे कई तरह के स्थानों पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। सबसे बुरे हालात में वे दास थे जिन्हें नावों से बांध दिया जाता था, नौसेना के जहाजों या व्यापारी जहाजों को चलाया जाता था या खदानों में काम किया जाता था, जिसके कारण अक्सर कुछ ही वर्षों में उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन सबसे बुरे हालात में शाही सम्राट के घराने के दास भी थे। सम्राट के घराने के कुछ दास प्रांतों के राज्यपालों की तुलना में अधिक शक्ति का प्रयोग करते थे और प्रांतों के राज्यपालों की तुलना में अपने लिए अधिक धन इकट्ठा करने में सक्षम थे, अंतः स्वतंत्र व्यक्ति बन गए और अपने आप में उल्लेखनीय एजेंट बन गए। इफिसुस में बड़े अगोरा फोरम बाजार शहर में कारीगरों के लिए एक जगह के लिए एक बड़ा द्वार है, और वह द्वार दक्षिणी द्वार ऑगस्टस के अपने घराने के दो मुक्त लोगों द्वारा बनाया गया था, और यह दो बातों का प्रमाण है। सबसे पहले यह अपने संरक्षक के प्रति कृतज्ञता का प्रमाण है, क्योंकि ये मुक्त लोग ऑगस्टस को अपना संरक्षक मानते थे क्योंकि उसने उन्हें आजादी दी थी। लेकिन यह इस बात का भी प्रमाण है कि अगर कुछ गुलाम इतने भाग्यशाली होते कि उन्हें शाही गुलाम बनने का मौका मिलता तो वे कितने अमीर और कितने शक्तिशाली बन सकते थे बजाय किसी और क्षेत्र में जाने के। अब हमने प्राकृतिक परिवारों के भीतर रिश्तेदारी के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन रिश्तेदारी का मतलब रक्त संबंधों से भी अधिक है, यहां तक कि प्राचीन दुनिया के लोगों के लिए भी। अलेक्जेंड्रिया से हमारे शुरुआती पहली सदी के यहूदी फिलो ने लिखा है कि रिश्तेदारी को केवल रक्त से नहीं मापा जाता है, बल्कि आचरण की समानता और समान लक्ष्यों की खोज से मापा जाता है। फिलो यह भी बताते हैं कि आदर्शों को साझा करने में विफलता, जैसे कि यहूदी जीवन शैली से परिवार के एक सदस्य की ओर से धर्मत्याग रिश्तेदारी संबंधों को खत्म करने की ओर ले जाता है। फिलो ने अपने पाठकों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि गैर यहूदी धर्मांतरित लोग जो यहूदी लोगों से वंशावली के किसी भी तरीके से संबंधित नहीं हो सकते हैं, एक नए परिवार यहूदी समुदाय में स्वागत पाएं। ठीक इसी तरह यीशु ने पहचाना कि उसका अनुसरण करने से प्राकृतिक रिश्तेदारी के संबंध खतरे में पड़ जाते हैं, और इसलिए वह अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक नया परिवार बनाने की बात करता है। हम इसे एक काल्पनिक रिश्तेदारी समूह कह सकते हैं जो रक्त और वंशावली से संबंधित नहीं है, लेकिन अन्य प्रतिबद्धताओं को इतनी निकटता से साझा करता है कि दयालु होना, एक जैसा होना प्राकृतिक अर्थों में रिश्तेदार होने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु कहते हैं, जो कोई भी पिता या माता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो कोई भी बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। इसलिए इस बात पर ध्यान दें तो यीशु शिष्यत्व की खातिर स्वाभाविक रिश्तेदारी के बंधनों के टूटने की संभावना की उम्मीद करते हैं। और फिर दूसरी ओर हर कोई जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है उसे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का वारिस होगा। जो लोग यीशु के घेरे में एक साथ आते हैं वे एक दूसरे के लिए भाई बहन और माँ और बच्चे बन जाते हैं, और साथी विश्वासियों के घर और साथी विश्वासियों के खेत इस जीवन में किसी के अपने घर और खेत बन जाते हैं, जो किसी भी प्राकृतिक रिश्तेदारी संबंधों के नुकसान की भरपाई करते हैं। खैर, हम नए नियम को देखना चाहते हैं और हम अगले व्याख्यान में एक पत्रस पर विचार करने जा रहे हैं, विशेष रूप से इस बारे में सोचने के लिए कि यह पृष्ठभूमि हमें यह देखने में कैसे मदद करती है कि प्रारंभिक चर्च में क्या हो रहा है, क्योंकि इसे एक काल्पनिक रिश्तेदारी समूह में बनाया जा रहा है। इस नए परिवार की कल्पना कैसे की जाती है? रिश्तेदारी का लोकाचार प्रारंभिक चर्च में रिश्तों के लोकाचार को कैसे आकार देता है और इसका क्या प्रभाव है? दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो प्राकृतिक घरों और प्राकृतिक रिश्तेदारी संबंधों पर प्रारंभिक ईसाई उद्घोषणा का क्या प्रभाव है? हम देखेंगे कि जिस तरह एक पत्रस ने शुरू से अंत तक सम्मान और शर्म के मूल्यों को दर्शाया है, उसी तरह यह चर्च और उसके आंतरिक संबंधों के बारे में सोचने के लिए प्राथमिक रूपक के रूप में घर का उपयोग करते हुए रिश्तेदारी के मूल्य, रिश्तेदारी के लोकाचार को भी बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह डॉक्टर डेविड डिसिल्वा द्वारा नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया पर उनके शिक्षण में दिया गया है। यह सत्र 5 है, परिवार और गृहस्थी।